हरे कृष्णा, श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्कान वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भगवद गीता यथारूप के भक्ति शास्त्री के अध्ययन में हम 10वें अध्याय विभूति योग के 29वें श्लोक से आगे आज पाठ करेंगे। अनंतश्चास्मि नागाना वरुणो यादसामहम् पितृणां मर्यमा चास्मे यम संयमताम अहम्। नागों में मैं अनंत हूँ, जिसके फन ज्यादा है। सांपों में वासुकी और नागों में अनंत। वरुणो याद साम अहम्, तो जहाँ जो जल के अधिपति है उसमें मैं वरुण हूं, और पितरों में मैं अर्योमा हूं, और सबको दंडित करने वालों में मैं यमराज हूं। कल एक किसी ने मेरे को व्हाट्सएप में भेजा था, किसी और ने, कौन सी विभूतियां हैं, पता नहीं 48-50 इसी की सारी मैं देखा था। तो इसमें हम तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अनेक फनों वाला सर्प अनंत कहलाता है, और जैसे जल के अधिपतियों में वरुण महान है, तो ये दोनों भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, विभूतियां हैं। एक पितृलोक है जहाँ का अधिपति अर्यमा है। आपने अर्यमा का नाम सुना है? अर्यमा का और यमराज का ऑफिस एक ही है। जब यमराज वहाँ नहीं होते हैं तो अर्यमा उसका कार्य करते हैं। जब विदुर यमराज विदुर के रूप में आए तो अर्यमा वो कार्य कर रहे थे। और जीव जो पाप कर्म करते हैं उनको दंडित करने के लिए यमराज उनमें मुख्य विभूति है। अब यम के लोक का प्रभुपाद जी हमको जानकारी दे रहे हैं कि यम का लोक कहाँ है। पृथ्वी के बिल्कुल नीचे है, गर्भ सागर के कोने में ये नीचे लोक है, यम लोक। परंतु यम वहाँ जिनको दंड देना होता है ना, उनको वहाँ भेजता है, वहाँ स्वयं नहीं रहते हैं। ऑफिस इनकी जो है अर्यमा के पास में, पितरों के लोक में रहते हैं। तो यमराज पापियों के दंड का विधान अपने वहां करते हैं। अब हम पढ़ते हैं 30वां श्लोक। प्रहलादस्यास्मि दैत्यानां कल्यतामस्मे मृगाणां च मृगन्द्रोहम् वैनित्यश्च पक्षिणा। तो दैत्यों में मेरी विभूति प्रहलाद है, महान भक्त। काल कल्यतामस्मे, जो सबको अपने बस में रखते हैं उनमें मेरी विभूति काल है। सब संसार काल के चक्कर से चलता है। और मृगाणाम च मृगेन्द्रोऽस्मि, और जो पशु है उसमें मैं शेर हूँ, शेर पशुओं का राजा मैं हूँ। वैनित्यस्य पक्षिणाम, और पक्षियों में मैं विनता का पुत्र गरुड़ हूँ। तो ये चार और विभूतियाँ हो गई। हाँ जी, क्या प्रश्न है? नहीं हो रहा है मेरा अपना, कल तो चल गया था। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, ये प्रश्न ये है कि ये नाग लोग और ये उनमें जो वैराइटीज होता है, कुछ नाग अलग होते हैं और वासुकी इनों का दोनों अलग होते हैं क्या? क्योंकि जैसे कि पाताल लोक में भी देखा जाए तो वहाँ पर भी एक नाग लोग अलग है, और ये कालियों वगैरह अलग ये में रहते हैं, तो उनमें भी थोड़ा क्लियर होना चाहते हैं।
वैसे इतना एक बात है कि सर्पों की माता सुरसा है, सर्पों की माता सुरसा है और कद्रू के पुत्र सांप हैं, तो इनकी माताएं भी अलग अलग हैं, हैं तो सारे कश्यप के पुत्र। और एक तो नाग लोक है, अब हम कहते हैं यहाँ भी सांप निकलते हैं तो इनका लोक यहाँ नहीं है। और जो हमारा ये कालिया था वो तो आया था रमणीक द्वीप से, वो जहाँ से जनार्दन महाराज आए हैं ना, फिलिपिन में, फिलिपिन मतलब नाम मेरे को नहीं आ रहा था, महाराज फिलिपिन है, फिलिपिन कहते हैं रमणीक द्वीप था, तो वहाँ से यहाँ आए थे। और क्यों आए थे, क्योंकि गरुड़ का भय उधर था, लेकिन यहाँ गरुड़ आ नहीं सकता था क्योंकि सौबरी का सांप था गरुड़ को, तो इसलिए वहां रहे। अब यहाँ नागालैंड तो हमारे यहाँ भारत में भी है, वो भी ना। वो यहाँ भी नागलोक है। अब जब देखते हैं कि भगवान कालिये का दमन कर रहे हैं तो नाग पत्नियां तो स्त्रियां जैसी लग रही हैं, नीचे उसको सांप है, नीचे ऊपर स्त्रियां और प्रार्थना कर रही हैं भगवान को, तो ऐसे है कि ये लोकों में सांप ही सब है ऐसा नहीं है, जिनको सांप की जूनी में है कुछ और भी है, जहाँ जैसे अनंत है, अभी वैसे देखें तो अनंत बलराम जी का विस्तार है, अनंत बलराम जी का एक विस्तार है जो जो गर्भ सागर से भी नीचे पाताल लोक में रहते हैं, जिसके ऊपर ये सारा पृथ्वी को धारण किया हुआ है, तो अनंत तो नीचे हैं। और वासुकी जिसको तो बनाया था रसी, वो तो आया था अपने नागलोक से, उसका वो जगह है वासुकी। और भगवान का तो ये सब नीचे के लोगों में नाक रहे, और हम किसका पढ़ते हैं और किस और कहाँ इसका उदाहरण है, तो एक विशेष जगह नागलोक है तो सही, नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। सो हमने विभूतियां तो सही, पर वो तो सब ठीक है, ये राखल राजा आपको सांपों में इतनी क्या ज्यादा रुचि है कि उन्हीं के लोगों के विषय में पूछ रहे हो। जानकारी के लिए बहुत अच्छा। हाँ वही वही, वो सुरसा जो हनुमान के रास्ते में है, जो उसको सर्पों की पत्नी है, और सर्प की माँ सर्प को जन्म लेते ही खा जाती है, तो परीक्षा के लिए बहुत कठोर कोई चाहिए, तो हनुमान की तो लेनी थी परीक्षा, तो परीक्षा के लिए सुरसा को भेजा था देवताओं ने कि बुद्धि कितनी है हनुमान में देख लो, बल तो है परंतु बुद्धि है कि नहीं। सो हमने पढ़ा 29वां श्लोक, अनंतश्चास्मि नागानां वर्ण यादसामहं पितृणां अर्यमास्मि यमस् संयमतामस्मि, और अब हम पढ़ रहे हैं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकल्यतामस्मि मृगाणां च मृगेन्द्रोऽस्मि वैनद्यश्च पक्षिणां, तो विंता के पुत्रों में मैं पक्षी हूँ। तो दैत्य किसको कहते हैं, दैत्य के पुत्र दैत्य, और दानव दानु के पुत्र दानव, कौनते कुंती के पुत्र, पांचों कौनते हैं, एक नहीं पांचों ही कौनते हैं। तो ये पहले मां के नाम से बेटों को जाना जाता था, ऐसे लगता है पिता के नाम से भी है लेकिन मां के नाम से ज्यादा है। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं दैत्य कहते हैं दिति के पुत्रों का, और उनमें मेरी विभूति प्रहलाद है। क्यों मेरी विभूति है कि सुमरण भक्ति का आचार्य है, उसका मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा की मूर्तिमान स्वरूप भगवान की सुमरण भक्ति का आचार्य है। सबको संयम में रखने वालों में मैं काल हूं, और वो तो ठीक है, गरुड़ का भी हो गया। हाँ जी पढ़ते हैं, गरुड़ जी एक कथा है कि अमृत अगर मिल जाए तो सांप की माता को किसी ने बंदी बना के रखा था, तो गरुड़ ने कहा मैं ला के पिलाऊंगा, सांप से इनका युद्ध था, तो ये अमृत ले आया था गरुड़, जबरदस्ती गरुड़ अमृत का कलश देवताओं से ले आया था, और ये हमारे काली देह का वृक्ष ने इसके ऊपर बैठा था, तो ये काली देह वाला वृक्ष अमर हो गया क्योंकि अमृत इसके ऊपर कलश के साथ बैठा था। तो भगवान ने इस कार्य करने के लिए उसको कहा कि क्या वरदान कुछ मांग लो, तो उसने कहा कि मुझे कि मैं अमृत पान करूं और अमर हो जाऊं और मुझे आपके वाहन बनने का आशीर्वाद दीजिए। तो असल में कथा तो सांपू के बीच में और इनके बीच में झगड़ा था, तो गरुड़ जी अमृत ले आए थे, तो भगवान को उनकी इस सामर्थ्य और शक्ति के ऊपर बहुत अच्छा लगा और वरदान में उनको अमरता और अपने वाहन बनने का आशीर्वाद दिया भगवान विष्णु ने। प्रहलाद जी लिखते हैं दिति के, हाँ दिति और आदिति दो बहनें हैं। दिति शब्द का अर्थ है जो टुकड़े टुकड़े कर दे, इसका मतलब खंड खंड करे, और आदिति का अर्थ है जो सबको जोड़ के रखे। तो आदिति के पति संस्कृत के शब्दों का अर्थ ऐसे है, वो दृढ़ धातु है, इसका अर्थ है तोड़ना या मिलाना। तो जो देवता है दिति के पुत्र, वो सबको साथ ले चलते हैं, दिति के पुत्र सबको खंड खंड करते हैं, और आदिति के पुत्रों को आदित्य कहते हैं, दिति के पुत्रों को दित्य कहते हैं। आदित्य सारे भक्त हैं और दैत्य सारे क्या लिखा है देखो, दैत्य सारे क्या हैं, नास्तिक हैं। दिति के पुत्र नास्तिक हैं और आदित्य के पुत्र आस्तिक हैं, और दोनों का बाप एक है कश्यप, और दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, और उन दोनों के झगड़े के बीच में भी शांत रहे वो कश्यप, दोनों के बीच में शांत रहे, ये कश्यप की बहुत बड़ी उदारता है। सो वो नास्तिक क्यों है, भगवान को नहीं मानते, देवताओं की पूजा करते हैं, ये सारे दैत्य जो है ये ब्रह्मा को प्रसन्न करते हैं, शंकर को करते हैं, परंतु भगवान के द्वेषी हैं, इसलिए नास्तिक। प्रहलाद दैत्यों में जन्म हुआ फिर भी भगवान का बचपन से ही महान भक्त था, और उनके अंदर जो भक्ति के लक्षण है वो भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। सबको संयम में और नियम में रखने के लिए बहुत से साधन हैं, परंतु काल ऐसा शक्तिशाली साधन है, इस जगत के सब चीजों को समय के साथ जीर्ण करके समाप्त कर देता है। तो काल भगवान की विभूति है, इसे काल भगवान का स्वरूप भी माना जाता है। सीधा भगवान कहेंगे 11वें अध्याय में, कालो अस्मि, मैं काल हूं। लोक क्षय प्रवृद्धो, लोक का क्षय करने के लिए आया हूं। तो काल भगवान की विभूति है, और पशुओं में शेर अपने वीरता और क्या कहा जाए, भयानक गुण के कारण राजा है, और गरुड़ पक्षियों का राजा है जो भगवान विष्णु का मान भक्त है। एक गरुड़ ऐसा वैष्णव है जो मांसाहारी है, वैष्णव है, विष्णु का भक्त लेकिन खाता मांस है, आने मांस भक्षण करता है, क्या करे गरुड़ बेचारा, उसका भोजन ही है। 31वां श्लोक, पवनः पवताम् अस्मि रामशस्त्रभृताम् जसानां वक्रश्चास्मि स्रोत्सामस्मि जहानवी। पवनः पवताम् अस्मि, पवित्र करने वाले और तीव्र गति से चलने वालों में मैं वायु। पवन एक तो पवित्र करती है, जहां से गुजरती है उस जगह को पवित्र करती है, पवित्र करने वालों में, और दूसरा तीव्र गति में चलने वालों में मेरी विभूति वायु है। राम शस्त्र भृताम, हम शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। ये राम है परशुराम, ये राम भृगुनंदन परशुराम का सूचक है, क्योंकि भगवान रामचंद्र विभूति नहीं है, वो तो साक्षात भगवान है। तो इस राम को परशुराम माना गया है। जसानाम वक्रश्चास्मि, जसानाम वक्रश्च मतलब जलचरु में मैं मगरमच्छ हूं, मगरमच्छ मकर मेरी विभूति है, जलचरु में भगवान की विभूति है मकर। श्रोत्सामस्मि जानमी, जो सरिताएं चलती हैं नदियां उसमें भगवान कहते मेरी विभूति है गंगा, जाह्नवी गंगा का नाम है। गंगा का नाम जाह्नवी क्यों है? जानु ऋषि की पुत्री के रूप में जानु ने प्रकट किया, पी गया था पूरी गंगा को, पूरी गंगा को पी गया था, तो फिर भागीरथी की प्रार्थना करने के पे उसने, तो गंगा जब गंगोत्री से उतरती है तो उसका नाम है भागीरथी, तब उसको भागीरथी कहते हैं। और क्योंकि चलती है इसलिए गंगा कहते हैं, गंगा का मतलब चलने वाली जो बहती रहे। और विष्णुपति कहते हैं क्योंकि विष्णु के चरण से निकलती है। सुरसरी कहते हैं, सुरसरी क्योंकि देवताओं के लोक को पवित्र करती हुई आती है। और जाह्नवी कहते हैं क्योंकि जानु ऋषि ने पुत्री के रूप में उसको प्रकट किया। ऐसे गंगा जी के और भी बहुत नाम हैं, भागीरथी उसको लाया इसलिए भागीरथी। परशुराम आवेश अवतार है भगवान का, शक्ति आवेश अवतार, इसलिए भगवान की विभूति है। क्या परशुराम ने क्या किया?
मेरा प्रश्न ये है, जो बताया गया है श्लोक में भावार्थ के रूप में बताया है, इधर मैं देख रहा हूँ रामायण के बारे में लिखा हुआ है रामचंद्र के बारे में, ये रामचंद्र जो रामायण में रामचंद्र है उसी के बारे में वर्णन है, वही राम है नहीं है ना?
देखो राम है तीन, प्रभुपाद जी से जब कोई पूछता राम बोला तीन राम है, बलराम परशुराम एंड रामचंद्र, ये तीन राम है। अब कौन सा राम कब किस स्थान के ऊपर किसका सूचना है, तो वो बलराम भी कह सकते हैं शस्त्र भृताम, वो भी तो भाई गदा 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 युद्ध के सबसे श्रेष्ठ गदाधर है, परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं क्योंकि वो तो है विष्णु तत्व, राम जी भी विष्णु तत्व है और बलराम भी तो है ही, ये शक्ति अवेश अवतार है, ये जीव है, तत्व जीव है, परंतु भगवान ने इसमें अपनी शक्ति डाल दी है परशुराम में, इसलिए ये भगवान की विभूति है। तो ये प्रभुपाद ने क्या लिखा है देखते हैं, मेरे सामने तो अभी ये है, अवतारों में तो नाम जैसे जैसे पृथ्वी महाराज का है वो भी जीव है, वो भी शक्ति अवेश अवतार है, जैसे बहुत से शक्ति अवेश अवतार हैं। शक्ति अवेश अवतार वो होते हैं जिनका वैकुंठ में अपना धाम नहीं होता, पर वो वैकुंठ में उनका धाम नहीं होता है, जिनका धाम है वो नित्य अवतार है। तो यहाँ जो लिखा है कि राम क्यों नहीं कहा गया, इस राम को रामचंद्र बोला, वो तो है विष्णु तत्व, परंतु ये जीव में विभूति है परशुराम, तत्व तो जीव है परंतु शक्ति अवेश विभूति है।
वामनदेव जो आकर आया था।
हाँ, वे वामन देव वैसे है तो विष्णु तत्व वामन देव का धाम है, वामन देव का नाम है, धाम है, वारा देव का है श्वेत वारा। अब यहां लिखा है पद्म पुराण में भागवत अमृत में लिखा है, हे देवी हमने परशुराम की आपको कथा बताई जिसको शक्ति अवेश अवतार कहते हैं, तो ये शक्ति अवेश के लिए इसका वर्णन ऐसे किया है। भागवत अमृत लघु भागवत अमृत अपने रूप गोस्वामी का, उसमें लिखा है जब जीव के अंदर भगवान की ज्ञान शक्ति या कोई और शक्ति का आवेश होता है तो उसको शक्ति अवेश अवतार कहते हैं। कैसे? जी जैसे प्रभुपाद शक्ति अवेश अवतार के, भगवान ने भागवत के प्रचार की शक्ति उनमें भर दी तो इसको कहते हैं शक्ति अवेश अवतार। और जलचरों में मैं मकर हूं, ये मकर एक मगरमच्छ को ही मकर कहते ऐसे नहीं है, एक विशेष मछली है मकर, मकर आकार के कुंडल पहनते हैं, एक विशेष प्रकार की मछली है। और नदियों में मैं गंगा हूं, प्रभुपाद जी लिखते हैं मकर को शार्क लिखा है, ये एक बड़ी भारी मछली होती है समुद्र में और भयानक है। 32वां श्लोक देखो, राम के ऊपर प्रभुपाद ने कुछ नहीं लिखा है नहीं, तो ये परशुराम है ऐसे चक्रवर्ती पाद हमको जानकारी। सागराणाम आदर अंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदत्ताम अहम्। सागरा नाम, हाँ, सर्गा नाम शब्द क्या है और सर्ग का क्या अर्थ है? सृष्टि करना, भगवान विष्णु का सृष्टि, जो सृष्टि है उसका आदि अंत और मध्य में हूं। और फिर है ज्ञान जो है अध्यात्म विद्या विद्यायन, जो ज्ञान है उसमें मैं जो आत्म विद्या है वो मेरी विभूति है, ज्ञान के अंतर्गत आत्म विद्या मेरी विभूति है। और वाद प्रवदताम अस्मि, आपस में जो बातचीत करनी है ना उसमें वाद होता है, वितुंड होता है और संवाद होता है। संवाद तीन है शब्द, विवाद तो बिगड़ा हुआ वाद है, संवाद के विपरीत विवाद हो गया, वितुंड वाद और एक और शब्द है, ये तीन प्रकार का संभाषण होता है, विवाद नहीं है दूसरा शब्द। मेरे गीता में लिखा है, अभी मेरे को जबान में आ जाएगा आगे, तो वाद में हूं, जैसे भगवत गीता संवाद है, तो वाद की परिभाषा है जहां शिष्य और गुरु में बात हो और परम सत्य को जाना चाहे तो ऐसी चर्चा को वाद कहते हैं, या दो शिष्य उन्नत भगवत तत्व को जानने के लिए आपस में बातचीत करें तो उसको वाद कहते हैं। और दूसरा, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी बात तो सुनने को तैयार नहीं हूं, मेरी बात ही आपके ऊपर थोप रहा हूं, तो ये इसके लिए शब्द एक और है, दो तीन तीसरा शब्द है कि कुछ सुनने को तैयार नहीं है, अपनी बात करेगा, तो ये कभी भी लाभ नहीं देंगे। तो बातचीत करने के तीन संस्कृत में उनके लिए तीन शब्द है, वाद वितुंड जलप, जलप वाद वितुंड जलप, जलप जिसको हम प्रजलप कहते हैं, जलप का मतलब जो आप कहेंगे हम आपको खंडन करेंगे, फिर आप हमारा खंडन करेंगे, ऐसे मानेंगे बिल्कुल नहीं। और वितुंड का मतलब आपको हराना ही है, चाहे कोई कारण हो ना हो, कोई तर्क हो ना हो, आपको हराना ही है, ये वितुंड। तो तीन नाम अब याद हो गए क्या? वाद, वाद जलप और वितुंड, ये तीन संभाषण के नमूने हैं। उसमें भगवान की विभूति वाद है, जो गुरु और शिष्य अथवा दो उन्नत भक्त भगवत तत्व के ऊपर चर्चा करें, और कि प्रकृति में जिस चीज से जो कुछ प्रकृति में बना हुआ, सर्ग का मतलब प्रकृति, तो प्रकृति में जो कुछ बना हुआ है वो कहां से निकलता है? मात तत्व से, वो मेरी विभूति है, ये चक्रवर्ती पाद कहते हैं। और 20वां श्लोक में भगवान अगमे पहले क्या कह के आए, देखो 20वां श्लोक में क्या कह के आए, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अब देखो ये दो 20वें श्लोक में और इस श्लोक में अंतर क्या है, वहां भी ये लिखा है यहां भी ये लिखा है, वहां है जीवों का मध्य, ये भौतिक सृष्टि का और जीव सृष्टि का, अब दोनों में अंतर ये हो गया। 20वें श्लोक में देखिए, देखो जरा 20वां पढ़ो, भूतानाम अहम हा अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, ये है जीव के लिए। और ये जो श्लोक अब हम पढ़ रहे हैं ये है भौतिक प्रकृति के लिए जो मात तत्व से बनती है। तो दोनों का ये अंतर समझ में आया, दोनों का सर्ग है भौतिक सृष्टि की बात, वो है जीवों की बात। अब एक विद्याओं में मैं क्या हूं, अब कौन सी विद्याएं आपको कितनी आती हैं? गुरुकुल पद्धति में भारत में 18 विद्याएं पढ़ाई जाती थी, ऐसे लिखा है 18 विद्या पढ़ाई जाती थी। तो एक श्लोक लिखा है विष्णु पुराण का, अंगानी वेदास चत्वारो मीमांसा न्याह विस्तृश धर्म शास्त्रम पुराणम च विद्याए एतास चतुर्दश, ये 14 प्रकार की विद्याएं हैं। विद्या कितना प्रकार की है आज? 14। 4 वेद, 6 दर्शन, उस 6 उनके अंग, वेदों के 6 अंग। कौन से 6 अंग है वेदों के? सुनो, शिक्षा, पहला अंग है शिक्षा, दूसरा है छंद, जैसे भगवत गीता कौन से छंद में है, मुख्य कौन सा छंद है? अनुष्टुप, और भी 4 छंद थे हमने पहले पढ़ा था, अच्छा है याद है आपको, हमको ही दिमाग में नहीं है, लेकिन अनुष्टुप याद है कौन सा छंद कौन से मंत्र में, इसका भी बड़ा अपना भाव होता है। आपने उपदेशामृत पढ़ा था ना, उसमें लास्ट छंद जो है वो कनक मंजरी छंद है, कनक मंजरी का मतलब धतुरा, वो तो प्रेम का है मधुर, वो मधुर छंद है, वो छंद ही दूसरा है, उसका नाम ही कनक मंजरी छंद है। तो ये छंदों का ज्ञान भी जिनको सीखना है वो सीख सकते हैं। तो यहाँ तो आपको 6 अंग कौन से हैं वेद के? शिक्षा, छंद, व्याकरण, व्याकरण तो एक अंग है ना, ग्रामर, तो तीन तो ये हो गए, निरुक्त डिक्शनरी माना और ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र और कल्प। कल्प मतलब जो यज्ञ आदि में रिचुअल्स होते हैं कर्मकांड में, ये वेदों को इसको कहते हैं वेदांग। वेदों के 6 अंग हैं। क्या नाम दोबारा बोलूं क्या? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, मीमांसा और न्याय, ये 2 और शास्त्र हैं, मीमांसा और न्याय। एक गौतम का न्याय है और एक न्याय जो हम मानते हैं वो वेदांत व्यास देव का, वो भी न्याय कहा जाता है। और धर्मशास्त्र, एक शास्त्र धर्म है, फिर पुराणा है, पुराण है, ये सब मिलाकर 14 प्रकार की विद्याएं हैं। तो इन 14 प्रकार की विद्याओं में मैं आत्मज्ञान हूं, मेरी विभूति है आत्मा का ज्ञान। तो यहां ज्ञान हूं मैं से, मैं कौन सा ज्ञान हूं? आत्मज्ञान हूं। ये ज्ञान कहां है? वेदांत में है और उसमें 4 अध्याय हैं जिसको चतुर लक्षणी विद्या कहते हैं। वेदांत सूत्र में 4 अध्यायों को चतुर्लक्षणा विद्या कहते हैं। वो परमात्मा और उसके जो पार्षद हैं उनका वर्णन करते हैं। तो इसके पहले अध्याय में ब्रह्म का ज्ञान है, दूसरे अध्याय में शास्त्रों में जो मतभेद है, शास्त्रों में जो एक दूसरे के विपरीत है उसका समन्वय किया गया है, तीसरे अध्याय में साधन ब्रह्म की प्राप्ति का है और चौथे अध्याय में ब्रह्म कैसे प्राप्त होता है, इसलिए आत्मविद्या का अर्थ ये है। तो ये 4 अध्यायों में ये 4 प्रकार का वर्णन है। पहले अध्याय में क्या है? वेदों का विषय ब्रह्म है। दूसरे अध्याय में जो एक, जैसे मैं आदमी कहे कि आंखें बंद भी रखता है खोलता भी है, जैसे भगवान विष्णु के लिए सहस्र नाम में एक श्लोक है, निमिषण अमिनिशम अनिमिषम। निमिषण का मतलब आंखें बंद करना, अनिमिषण का मतलब आंखें खुली रखना। तो अभी एक दूसरे के विपरीत है, जो आंखें बंद रखेगा वो आंखें खोलेगा कैसे? तो इनका समन्वय करने के लिए, जहां 2 चीजें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, उसके लिए एक अध्याय है पूरा। जैसे भगवान विष्णु आंखें बंद कब रखते हैं? जब किसी का दोष नहीं देखना होता है। और खुली कब रखते हैं? जब किसी की अच्छाई को देखना है, छोटी अच्छाई को भी नहीं भूलते। जैसे पूतना आई तो भगवान ने आंखें बंद कर दी, क्योंकि अब दोष नहीं देखना है, इसकी अच्छाई को ही देखना हो। ये दूध पिलाने आई है तो इसको माता की गति दे दूंगा। और जब द्रौपदी ने भगवान की उंगली पे पट्टी बांधी तो एक छोटा सा काम था, लेकिन भगवान ने खुली आंख से देखा कि इसका ऋण उतारना पड़ेगा, साड़ी देनी पड़ेगी समय आने के ऊपर। तो भक्तों के गुण को, सेवा को, छोटी सेवा को भगवान देखते रहते हैं, कभी नहीं भूलते हैं, और भक्तों की गलती को आंखें बंद करते हैं, देखते ही नहीं, सुनते ही नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, परंतु इन दोनों का कैसे समन्वय होता है ये अध्याय में वर्णन है। और तीसरे अध्याय में साधन जिसके द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो। और चौथा अध्याय है जिसको ब्रह्म प्राप्त हो गया उसका लक्षण। तो ये 4 अध्याय आत्मविद्या है। जब 2 व्यक्ति आपस में संभाषण करते हैं, या जिसको आजकल हम क्या कहते हैं, लड़के एक तरफ एक बोलता है उसके विपरीत दूसरा बोलता है, इसको अंग्रेजी में डिबेट बोलते हैं, वाद प्रतिवाद, वाद प्रतिवाद कहते हैं जनरली। तो इसमें 3 है शब्द यहां लिखे हैं, वाद, जलप और वितंड। ये 3 प्रकार के तर्क वितर्क होता है। जब दोनों पक्ष अपना मन अपना मंतव्य देकर तर्क देकर अपनी बात को समझाने का प्रयास करें, उसके लिए बहुत सारे प्रमाण भी लेकर आए, इसको जल्प कहते हैं। तो जल्प क्या है? आप अपनी बात को ठीक, जैसे एक व्यक्ति यहां हमारे पास कौन सी डिबेट जैसे हो, भगवान है कि भगवान नहीं है, भाई निराकार है साकार है, तो साकार वाले सारे शास्त्र से साकार का प्रमाण दें, निराकार वाले सब निराकार का प्रमाण, और दोनों कहेंगे हम जीतना चाहते हैं। जब ऐसा बात हो तो उसको जल्प कहते हैं, और जल्प से कोई निर्णय नहीं निकलता, वो हमेशा झगड़ा चलता ही रहेगा। ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, निराकार साकार अभी भी लड़ रहे हैं। प्रभुपाद ने एक तात्पर्य लिखा है, आज भी संतों में निराकार साकारवादी की लड़ाई चल रही है, तो ये जाने वाली है नहीं, इसको जल्प कहते हैं। अब दोनों बातें कर रहे हैं, मैं सही कह रहा हूं परंतु आपके पास कोई तर्क नहीं है, परंतु आप कहते तुम गलत हो। भाई क्यों गलत हूं मुझे बताओ, बोलो बस आप गलत हो, हमारे पास कुछ भी नहीं, इसको वितंड कहते हैं। ये वितंड, भाई तुम ये गलत क्यों कह रहे हो, कुछ भी हो आप गलत हो। जिसके पास अपना कोई तर्क वितर्क ना हो उसको वितंड कहते हैं। इसमें कभी कोई फल नहीं मिलता, ये सिर्फ चतुराई है। परंतु जब परम सत्य को जानने के लिए बातचीत की जाए तो उसको वेद का वाद कहते हैं, ये भगवान की विभूति। गुरु शिष्य के बीच में जो बात होती है, या जैसे अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद है, ये सम्यक वाद है। तो अब तीन शब्द समझ में आए, कौन से? जल्प, वाद और संवाद। नहीं, संवाद नहीं, वितंड। अब जल्प क्या है? रोज झगड़ा करते हैं आपस में, तुम ठीक नहीं पकाते हो, मैं ठीक पकाता हूं, अब मैं देखो मैंने इतना बनाया, कभी पूरा नहीं होना है, झगड़ा चलते रहना। तुम अच्छा नहीं पकाते, भाई तुम अच्छा नहीं, मेरे को आता ही नहीं है पकाना, पर तुम अच्छा नहीं पकाते, भाई तो तुम पका, बोलो मेरे को नहीं आता है लेकिन तुम अच्छा नहीं पकाते, ये वितंड है। लेकिन दोनों कहेंगे भैया देखो हम दोनों मिलकर भगवान के भोग लगाने के लिए पकाए, तुम्हें पकाना नहीं आता, कोई नहीं बर्तन धो लो, ये हो गया वाद। तो वाद से निर्णय निकलता है, जलप से कोई निर्णय नहीं निकलता, और वितंड से तो झगड़ा ही होता है। तो ये तीन प्रकार का है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखो प्रभुपाद ने पहली लाइन लिखी है महत्तत्व, सीधा लिखा है कि यहां सर्ग महत्तत्व का सूचक है। टोटल मटेरियल एलिमेंट लिखा है ना, क्या लिखा है इसके लिए? हाँ, समस्त भौतिक तत्व क्या है? महत्तत्व। जो समस्त भौतिक तत्व लिखा है यही महत्तत्व है। तो ऐसे समस्त भौतिक तत्व आप लिखो जो कभी समझ में नहीं आएगा क्या है, नहीं ना, महत्तत्व लिखोगे तो समझ में आएगा। तो ये महत्तत्व है। तो ये कौन करता है सारी सृष्टि? प्रभुपाद लिखते हैं तीन, विष्णु का वर्णन पहले ही कर दिया है, ये कार्य तो तीन करते हैं, और संहार शंकर जी करते हैं, और ब्रह्मा जी विसर्ग करते हैं। विसर्ग लिखा है, नहीं सेकेंडरी क्रिएटर लिखा है अंग्रेजी में, लिखना चाहिए सीधा शब्द विसर्ग, सही शब्द है विसर्ग। ब्रह्मा जी विसर्ग करते हैं, विशेष सर्ग। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? देखो हमारे को यहाँ फीस्ट करना है, मैं फीस्ट कराना चाहता हूँ, मैं फीस्ट कराना चाहता हूँ, तो मैं बाजार से दूध मैं ला के देता हूँ, चीनी मैं ला के देता हूँ, आटा मैं ला के देता हूँ, घी मैं ला के देता हूँ, सब्जी मैं ला के देता हूँ, अब मैंने दे दिया किचन में, अब गौर भगवान इसमें से कचौरी बनाए या समोसा बनाए या चपाटी बनाए या पूरी बनाए, तो जो मैं हूँ मैं क्या करता हूँ, सामग्री देता हूँ, ये है स्वर्ग। भगवान देते हैं सामग्री और ब्रह्मा जी उससे बनाते हैं 84 लाख जूनियाँ अलग। तो नाना प्रकार की संस्कृति आकृति प्रकृति ये ब्रह्मा बनाते हैं, भगवान सिर्फ मसाला देते हैं, सामान सारा भगवान देते हैं। ऐसे देखे दो प्रकार का कांटेक्ट होता है ना, ये इनके पास कांटेक्ट है बिछाई वाले का, सामान हमारा बनाओगे तुम, तो ये वो क्या कर रहा है विसर्ग, और ये क्या कर रहा है सामान देने वाले सर्ग, ये मिठाई का सर्ग और विसर्ग हो गया। हमारा जब प्रचार करते हैं ना तो हम ऐसे समझाते हैं उनको, भगवान ने शरीर बनाने का सारा मसाला दे दिया ब्रह्मा जी को, और जीव और उसके कर्मों का पूरा चिट्ठा दे दिया। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनके पास एक बड़ा कंप्यूटर है, बहुत बड़ा, उसमें जीव को डाला, उसके कर्म के चिट्ठे को डाला कि इसने क्या किया, तो उसने आया तो बड़ा देवता था, अच्छा आदमी था, सबका भला करता था, ब्रह्मा जी के ये तो देवता बनने के लायक है, मसाला वो डालेगा अंदर ही अर्थवी पृथ्वी जन आकाश वायु और दबाएगा बटन, द देवता बाहर बन के निकल आएगा। अब एक जीव को डाला और उसका कर्म का चिट्ठा डाला, अंदर देखा देखा सुबह से शाम तक मजदूरी करता था, कभी कहीं सेवा शाम कुछ नहीं की, गधा बनना चाहिए, मसाला डालेगा और ग दबाएगा और गधा बाहर। तो ब्रह्मा जी को कुछ नहीं करना है भाई, इतना तो सबके लिए भगवान उसको मसाला देते हैं, जीव और उसका कर्म देते हैं, और ब्रह्मा जी बस मशीन में डालो और बाहर निकला, ये है विसर्ग। तो सर्ग और विसर्ग समझ में आ गया। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, ये प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो सृष्टि के कहा जाए के प्रतिनिधि है, एक सृष्टि करता है ब्रह्मा और एक विष्णु जो उसका पालन करता है और एक संहार जो शंकर करता है, ये भगवान के अवतार हैं गुण, और ये भगवान के गुण अवतार हैं, ये तो जानकारी दे रहे हैं, इसलिए भगवान की ये विभूतियां हैं तीनों। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान में प्रगति के लिए हमारे पास बहुत से ज्ञान के पुस्तक हैं, जैसे कि चार वेद हैं और चार वेदों के अंग है, देखा देखो लिखा पड़ा है ना, जो छह वेदों के अंग लिखा है ना, नाम नहीं लिखा है सिर्फ लिखा है इतना, ना अच्छा वेद अंग होना चाहिए शब्द, छह वेदों के सप्लीमेंट वेद अंग, सप्लीमेंट में का अंग, तो शब्द होना चाहिए छह वेद अंग, चार वेद छह वेद अंग, वेदांत सूत्र, फिर न्याय लिखा है ना न्याय, फिर धर्मशास्त्र, फिर पुराण। तो कुछ नाम प्रभुपाद जी ने याद दिए हैं, वैसे 14 विद्या है हमारी, 14 विद्या ये और 6 और इसमें जोड़ के 18 विद्या कहते हैं, वो 6 कौन सी है, ये षट शास्त्र तो इसी के अंतर्गत, फिर भी पतंजलि योग नहीं है इसमें, जैसे पतंजलि का योग है वो अलग शास्त्र है, ऐसे 14 विद्याएं कहते हैं, कहीं कहीं 18 विद्याएं कहते हैं, तो ये सब विद्याएं कहलाती हैं नाना प्रकार की। अब प्रभुपाद जी ये सब 14 विद्या है, देखो 14 ज्ञान निकाल ना, देखो 14 हो गया, ये 14 प्रकार की विद्या है, इसमें जो अध्यात्म विद्या है वो भगवान की विभूति है, और कहाँ है वो, प्रभुपाद जी वेदांत सूत्र में है, और वेदांत सूत्र के चार अध्याय जो हमने कहा वो इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये अब क्या है, वो पढ़ के ये पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, वो पढ़ के ये पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है। प्रभुपाद जी ने जो आचार्यों की टीका को लिखा है उससे इसको समझना आसान है। प्रभुपाद जी के यथारूप भगवद गीता को समझने के लिए ये दो आचार्यों की टीका को देखना आवश्यक है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो तर्क वितर्क करते हैं उसमें बहुत से प्रकार हैं। एक को जल्प कहते हैं, देखो लिखा है, हर एक अपना पक्ष को ही प्रतिपाद करना चाहे उसको जल्प कहते हैं। जो दूसरे को केवल हराना चाहे, अपना पक्ष ही नहीं प्रस्तुत करे, उसको वितंड कहते हैं, लिखा है ना। और जो वास्तविक निर्णय पे पहुंचना चाहे उसको वाद कहते हैं। और वास्तव निर्णय में परम सत्य श्री ये वाद जो है ये कृष्ण की विभूति। तो आज क्या आपने ज्यादा सीखा, 14 विद्याओं के बारे में जानकारी हुई और 3 प्रकार के तर्क वितर्क के विषय में, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं 33। अक्षराणाम अकारो अस्मे द्वंद्व समासिकस्य च अहम् एवाक्षः कालो धाता अहम् विश्वतो मुखम्। अक्षराणाम अकारो अस्मि, अक्षरों में मैं अ हूं। पहले हमने क्या पढ़ा था, अक्षरों में ओंकार हूं, यहां अक्षरों में मैं ओ हूं। और द्वंद्व समास शिक्षा चाह, जहां एक शब्द कहने का शैली होती है, जैसे कहे कृष्ण अर्जुन, जैसे राम कृष्ण, ये द्वंद्व है। तो जहां कुछ शब्द जोड़े जाते हैं उनमें भगवान की विभूति है द्वंद्व। तो द्वंद्व ऐसे शब्द होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं कि कहने में रस आता है। अब देखो कुछ कहने कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो ये द्वंद्व मैं हूं। और जो सबका क्या कर, सम एवाक्षः कालो अस्मि। तो यहां पहले एक बार भगवान ने कह दिया मैं काल हूं, फिर ये कौन सा काल है। सबका प्रलय करने वाला मैं शंकर हूं, ये काल शंकर का रूप है। इसको शंकर का रूप एक आचार्य ने माना है। और धाता हम विश्वतो मुखम, धाता का मतलब सृष्टि करने वाला, उसमें मैं ब्रह्मा हूं। विश्वतो मुखम मतलब जिसका चारों ओर मुख है। तो जो तो यहां कितनों क्या है, अकार तो समझ में आ गया, द्वंद भी समझ में आ गया, और जो काल है उसके लिए एक आचार्य ने कहा है जो प्रलय के समय अग्नि निकलती है वो मेरा स्वरूप है, क्योंकि प्रलय वही अग्नि करती है जो शेष के मुख से निकलती है। और कौन प्रलय करता है, शंकर जी करता है। दोनों लिखा है, थोड़ा सा ही दोनों आचार्यों ने दो शब्द लिखे। देखें प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, और सृष्टिकर्ताओं में विसर्ग करने वालों में धातारो धाता हम विश्वतो मुखम। द्वंद इसलिए दोनों शब्द बराबर वजन के होते हैं। महाकाल में रुद्र हूं जो सबका विनाश करता हूं, और विश्वतो मुख ब्रह्मा में हूं। अकार कैसे हो, तो लिखा है श्रुति में लिखा है अकारो वही सर्वा वाका, सारे शब्दों में आएगा अकार, सब शब्दों में आएगा। ये ऐत्रेय आरण्यक का श्लोक है। तो और कौन से शब्द है, एक तो द्वंद में हूं, तो और भी तो कोई होंगे ना ऐसे शब्द, तो उनका नाम भी लिखा है। समास कितने प्रकार के हैं, ये बात क्या हो रही है, समास कितने प्रकार के हैं, क्या हम विषय के समास कितने प्रकार के हैं। समास का मतलब शब्दों का आपस में जोड़ना, संस्कृत जो पढ़ते हैं उनको मालूम होगा समास कितने प्रकार के हैं, एक दो तीन और चौथा ये द्वंद्व। तो एक को कहते हैं अव्यय अव्ययी भाव, अव्ययी भाव एक समास, अव्ययी भाव दूसरा तत्पुरुष, और तीसरा है बहु बहुव्रही बहुव्रही है ना। और हाँ तो ये समास हैं, उनमें मैं द्वंद्व हूँ जिसके दोनों वजन बराबर होते हैं, दोनों शब्दों का वजन जैसे राम कृष्ण ऐसे कहने से दोनों बराबर लगे, तो वो द्वंद्व मेरा विभूति है। और नाश करने में वालों में मैं काल हूं, वो अग्नि जो संकर्षण के मुख से निकलती है प्रलय के समय, वो यहां उसका वर्णन कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, अकार पहला शब्द संस्कृत में जो अ है वो वेद के साहित्य का पहला शब्द है अ, मतलब अ में ही सब, अ से ही सब उच्चारण होता है, बिना अ के कोई शब्द बनेगा ही नहीं, इसलिए वो शब्दों का आरंभ है। और संस्कृत में बहुत समास होते हैं जिसमें दो दो शब्द होते हैं, उसमें भगवान जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया राम कृष्ण, ये द्वंद्व है राम कृष्ण द्वंद्व, इसको द्वंद्व कहेंगे जहां दोनों शब्द बराबर के हों। और कुछ ऐसे बनाओ समास, द्वंद्व समास बनाओ, लोटा लोटी लोटा डोरी, ये संस्कृत वाले से पूछे कौन सा पास हुआ। वैसे लोटा लोटी अच्छा है, दोनों बराबर है, लोटा और लोटी, घोटा घोटी गोटा गोटी मोटा मोटी। छोटा छोटी रोटा रोटी, ये सब समाज है और क्या है, मतलब द्वंद्व है सारे, जोड़े जोड़े और क्या है, ये पहले किसी ने लिखा है तो हमारी पुराने लिख दो। सो रामकृष्ण प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, ये समास बराबर के दो शब्द होते हैं। अब प्रभुपाद ने काल के लिए दोनों का आचार्यों का अलग मत कोई नाम नहीं दिया है, देख लीजिए प्रलय लिखा है। अब प्रलय कौन करता है, दोनों करते हैं, प्रलय कौन करता है, शंकर जी भी प्रलय करते हैं और संकर्षण भी करते हैं, अग्नि संकर्षण के मुख से निकलती है और फिर शंकर जी है ही प्रलय करने के लिए, तो प्रभुपाद ने दोनों में से नाम कोई नहीं दिया है, परंतु ये काल है संकर्षण और शंकर दोनों का सूचक। तो ब्रह्म धाता है चतुर्मुखा, ये भगवान की विभूति है। हम आगे बढ़ नहीं पाए, हम सोचे आज पूरा कर देंगे, क्या करें कल पूरा करें, अभी और हैं 34 अभी अभी हाँ कल तो नहीं होगा, अब वो मंडे को ही होगा। फिर ये श्लोक तो पढ़ते जाइए भैया, मृत्यु सर्वस्याहम् उभयस्य भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्चनारीणाम् स्मृति मेधा जति क्षमा। तो पहली लाइन का अर्थ क्या होगा, जो सब कुछ छीन लेने वालों में मैं मृत्यु हूँ, सब कुछ छीन लेता है, सब कुछ नहीं रह जाता है, कुछ साथ नहीं जाता है, मृत्यु सर्वहर्ष चाम। तो अब देखो तीन बार काल आ गया, एक दो काल तो पहले आ चुके हैं, ये तीसरा काल है। एक समय है जो सब चीजों को समय के साथ जीर्ण करके और समाप्त करता है, ये एक काल था। एक काल है प्रलय वाला काल, और ये तीसरा काल है। एक व्यक्ति मरता है तो उसका सब कुछ छूट जाता है, तो ये तीसरा काल है। ये तीन विभूतियां काल की है एक दृष्टि से देखा जाए तो, और ये वो समष्टि वाले हैं दोनों, और ये व्यष्टि देखा है। और गहराई में देखें तो ऐसे उभवश्च भविष्यताम, उभवश्च भविष्यताम का मतलब जो शरीर में छह परिवर्तन होते हैं उनमें से मैं क्या हूं, भविष्यताम जन्म। क्या लिखा है, जन्म है ना, क्या लिखा है, उत्पन्न करने वालों में मैं जन्म हूं। असल में शरीर में जो छह परिवर्तन होते हैं मैं उसमें मेरा विभूति जन्म है। देखो जन्म होता है तो घर में कम से कम हंसते तो है ना, बाकी बूढ़े होने के ऊपर कोई हंसता है क्या, मरने के ऊपर कोई हंसता है। बोला बच्चा रोता है और माँ खुश होती है केवल जन्म के समय, बाकी कभी बच्चा रोएगा माँ दुखी होगी, पर जन्म के समय बच्चा रोता है तो माँ बहुत खुश होती है। तो जन्म भगवान की विभूति है, बाकी छह चीजें जो है जांच किसी का टूटे कौन सी विभूति है। तो ये जन्म का यह वर्णन है, बाकी छह चीजें और हैं। कीर्ति श्री वाक च नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा, ये छह गुण हैं। इसके दो अर्थ कवि करते हैं, एक तो ये सारे स्त्री लिंग है, ये गुण कोई भी धारण कर सकता है परंतु ये गुण स्त्री लिंग है। और एक में कि ये सारी स्त्रियों के नाम है, वेदों में ये सब स्त्रियों के नाम भी है, इसमें से कीर्ति भी है, श्री भी है, वाक भी है, स्मृति भी है, मेधा भी है, धृति भी है, क्षमा भी है, ये धर्म की पुत्रियां हैं। जैसे ये धर्म की पत्नियों का या पत्नियों का नाम है इनमें से बहुत सा, तो धर्म के ऊपर चलने वालों में ये गुण आएंगे। तो ये गुण जो है ये स्त्री लिंग है और ये भगवान की विभूतियां हैं। और नारी नाम, और इसी श्लोक को लेके एक बहुत बड़े विराट सम्मेलन में नेपाल में नारी ने कहा था, देखो भगवत गीता में नारियों के छह गुण लिखे हैं, पुरुषों के नहीं लिखे हैं। उसने ये श्लोक उधर बोला था, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। तो इसका अर्थ कल पढ़ेंगे, आज कथा को यहाँ विराम देते हैं, आपका भोजन का समय हो गया।